ये आकाशवाणी है, अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रयागराज में महाकुंभ के संगम घाट पर कल तड़के हुई घटना में 30 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। संवाददाता सम्मेलन में कुंभ मेला क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि यह घटना रात 1 से 2 बजे के बीच हुई, जब अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा होने से बैरिकेड्स टूट गए। उन्होंने बताया कि घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान चलाया, एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक कल प्रयागराज में संगम पर हुई भगदड़ की घटना के बाद आज महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रयागराज जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम घाट पर हुई घटना पर शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। उन्होंने घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान सरकार सदन के नेताओं के साथ चर्चा करेगी और सत्र के सुचारू संचालन के लिए पार्टियों का सहयोग मांगेगी। बजट सत्र 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू होगा। 31 जनवरी को ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वित्त मंत्री 1 फरवरी यानी शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा और सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। सरकार ने 34,000 करोड़ रूपये से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक सुदृढ़ मूल्य श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है। कल नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व पर प्रकाश डाला। सरकार ने गन्ना फीड स्टॉक से एथेनॉल खरीद के मूल्य की भी मंजूरी दी है। गन्ना फीड स्टॉक में सी हैवी शीरा, बी हैवी शीरा और गन्ने का रस, चीनी और चीनी सिरप शामिल हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण से देश की अर्थव्यवस्था में भी मदद मिली है और 1,13,000 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार 2030 तक 500 गीगावाट बिजली और ऊर्जा सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। नई दिल्ली में कल 3री इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि आने वाले समय में ऊर्जा की मांग दोगुनी होने की संभावना है और 50% से अधिक आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने और दिल्ली के निवासियों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। कल उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबों के लिए घर बनाने, दिल्ली को आधुनिक बनाने और हर घर में नल से पानी पहुंचाने जैसी उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण 3 लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत गैर जरूरी निर्माण कार्य और सड़क निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।